तारीख 8 जनवरी दिन बुधवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दास। भारत बंद का आज दिखा व्यापक असर।
हम केंद्र की मोदी सरकार को जताना चाहते हैं, जो मंशा पाले हुए हैं, जो नाराज अपने मन में आप पाले हुए हैं।
जेएनयू हिंसा के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस पर लग रहे हैं आरोप।
सी दिल्ली इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्टर, पुलिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्टर, दिस अटैक इज स्पॉन्सर्ड बाय।
दुनिया जहान में आज चर्चा ईरान बनाम अमेरिका की।
ईरान को दो चीज चाहिए, एक तो एक रिटालिएशन और दूसरा क्लेम कर सकें कि हमने ये किया है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत में आज मजदूर यूनियनों ने देशव्यापी बंद बुलाया, जिसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। मजदूर यूनियनों का आरोप है कि सरकार श्रम कानून में बदलाव करके उनके अधिकारों का हनन कर रही है और लेबर कोड के नाम पर मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इराक में अमरीकी सैन्य अड्डों पर हुआ मिसाइल हमला कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सब कुछ ठीक है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है, हमले में किसी के मरने की खबर नहीं है। ईरान का कहना है कि उसने ये हमला पिछले हफ्ते ईरान के सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के जवाब में किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने एक टीवी संबोधन में कहा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई अमरीकियों के मुंह पर तमाचा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में अमरीका की मौजूदगी को कम करना ज़्यादा ज़रूरी था। यूक्रेन का एक यात्री विमान कल देर शाम तेहरान के इमाम खमेनेई हवाई अड्डे से कीव के लिए उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान पर सवार 176 लोगों की मौत हो गई है। ईरान में यूक्रेन के दूतावास ने चरमपंथी हमले की साजिश से इनकार करते हुए कहा है कि शुरुआती खबरों के अनुसार विमान के इंजन में खामी के कारण यह हादसा हुआ है। इस मामले में यूक्रेनी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा है कि 6 जनवरी 2020 को इस विमान की पूरी तकनीकी जांच भी हुई थी। इधर यूक्रेन ने हादसे के बाद सभी यात्री विमानों की जांच किए जाने के आदेश दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा,
висловлювання будь-яких версій до офіційного з'ясування причин це, ну,
प्लेन क्रैश के कारणों की आधिकारिक घोषणा से पहले कोई अटकलें लगाना गलत होगा। हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। कई समूह इस मामले की जांच करेंगे, ईरान भी इसकी जांच करेगा। हमने ईरान से कहा है कि हम भी इस जांच में हिस्सा ले सकते हैं। ये थे यूक्रेन के प्रधानमंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्जुल फोन डेर लायन ब्रिटेन यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के साथ करीबी संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने साल के अंत तक समझौता करने पर जोर दिया तो यूरोपीय संघ के एकल बाजार और कस्टम यूनियन की अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं होगा।
We are ready to design a new partnership with zero tariffs.
हम जीरो टैरिफ, जीरो कोटा और जीरो डंपिंग के साथ नई साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। इस साझेदारी में सिर्फ व्यापार की बात नहीं होगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लेकर डेटा प्रोटेक्शन तक और मत्स्य पालन, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और वित्तीय सेवाएं भी इसमें शामिल होंगी। हम तय वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को तैयार हैं। ये थे यूरोपीय संघ की प्रमुख के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के नए प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने किंग फिलिपे की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। उनके कैबिनेट के मंत्री गठबंधन सहयोगियों में से होंगे, जिनमें लेफ्ट विंग ओनिडास पोडेमास समूह भी शामिल है। युगांडा में रवांडा के उन 9 नागरिकों के खिलाफ लगे आरोप वापस ले लिए गए हैं, जिनमें अगवा करने और गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के आरोप थे। इन लोगों को अब उनके देश वापस भेजा जाएगा। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब दोनों देशों के बीच एक साल से तनाव बना हुआ है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कल रात ईरान ने पड़ोसी इराक के इरबिल और अल असद में मौजूद अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान का कहना है कि उसने ये हमला संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत आत्मरक्षा के लिए किया है। साथ ही कहा है कि ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का ये बदला है। इस पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था ऑल इज वेल, लेकिन आज वो किसी भी वक्त इस पर बयान दे सकते हैं। आगे दुनिया जहान में ईरान और अमरीका के बीच चल रहे तनाव के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले बात आज के भारत बंद की। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के नेतृत्व में करीब 10 संगठनों और उनसे जुड़े संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल की थी। कई राज्यों के कई इलाकों में आज इस कारण यातायात बंद रहा और रेल सेवा पर भी असर पड़ा। जहां बीजेपी ने बंद को असफल बताया है, वहीं वामपंथी दलों ने इसे सफल बताया है। सुनिए बीबीसी संवाददाता भूमिका राय की रिपोर्ट।
अर्थव्यवस्था में मंदी, विनिवेश, रोजगार, खेती संकट और नागरिक संशोधन कानून के विरोध में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर देश भर की सैकड़ों यूनियन ट्रेड्स ने आज भारत बंद किया। पंजाब से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक कई जगहों पर आज सड़कों पर चक्का जाम रहा और यातायात प्रभावित रहा। कई जगहों पर रेल सेवा भी प्रभावित रही। शिमला में बर्फबारी के बीच सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर किसानों ने भी आगे आकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया है और कहा है कि सरकार को किसानों की मुश्किलों पर ध्यान देने की जरूरत है।
जो फसलों के दाम है वो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दिए जाएं और जो हमारे लागत खर्चे आ रहे हैं उनमें से 50% मुनाफा जोड़ के दिए जाए। आप देखेंगे हमारे साथ बहुत सारा जुल्म हुआ, कहीं भी किसी सरकार ने हमें फसलों के दाम जो है पूरे नहीं दिए हैं।
महाराष्ट्र में भी आज कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। मुंबई में एक श्रमिक ने कहा,
सर हमारी प्रमुख मांग ये है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी है, इसको आज डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसको बेचा जा रहा है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, नवरत्न अवार्ड विनिंग कंपनी है। अगर आप इस कंपनी को सिर्फ कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन सरकारी मालमत्ता को उनके पास सौंपना चाहते हो, और इसको हम प्रमुख से विरोध करने के लिए आए।
बंगाल में बंद का समर्थन करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति कहते हैं कि जिनके खिलाफ आज बंद की अपील है उन पर तो देश को बांटने का आरोप है।
অভিযোগ বললাম তো অনেক বড় বড় অভিযোগ, যাদের বিরুদ্ধে আজকে বন্ধ তাদের বিরুদ্ধে দেশ ভাঙচুরের অভিযোগ আছে।
वहीं बैंक वर्कर्स के राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय सचिव अश्विनी राणा कहते हैं कि बंद केवल आंशिक तौर पर ही प्रभावी रहा है।
बैंक की भी जो लेफ्ट और कांग्रेस की यूनियन है वो लोग हड़ताल पर है, लेकिन बहुत से बैंक खुले हैं, कुछ बैंकों में असर है, लेकिन स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, यहाँ काम चल रहा।
वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि वामपंथी विचारधारा पर आधारित अर्थव्यवस्था को विश्व ने पहले ही नकार दिया है, ऐसे में बंद का कोई असर नहीं है।
हर विषय को जोड़ देना, हर विषय को मतलब अर्थव्यवस्था की बात भी करना, CAA की भी बात करना और विषयों को भी खींच के कहना, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेके जो स्पष्ट बोल रही है वामपंथी दल, खास तौर से उन्हें ये भी तो जवाब देना पड़ेगा, विश्व में वामपंथी सोच की अर्थव्यवस्था कहां पर कभी चली है? हर जगह जो है या तो ठप हो गए या बंद हो गए।
ट्रेड यूनियंस की भारत बंद की अपील को भले ही बीजेपी सफल न बताए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार किसान, मजदूर, छात्र और कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। जहां कई अर्थव्यवस्था की बेहतरी की बात कर रहे हैं, वहीं अनेकों के लिए नागरिकता संशोधन कानून बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। 3 दिन पहले यानी 5 तारीख की शाम को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 5 तारीख को JNU के परिसर में देर शाम करीब 50 नकाबपोशों ने घुसकर छात्रों और शिक्षकों को पीटा था। इस मामले में जांच जिस तरह आगे बढ़ रही है उसे लेकर कई हलकों में सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी।
5 तारीख को 50 से अधिक नकाबपोशों ने राजधानी में मौजूद देश के एक बड़े विश्वविद्यालय में घुसकर मारपीट की। विश्वविद्यालय के परिसर में 3 घंटे तक हिंसा का नंगा नाच होता रहा। विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस समय रहते पहुंची। उसे भीतर हिंसा होने की खबर भी थी, लेकिन पुलिस ये कहते हुए भीतर नहीं गई कि जेएनयू प्रशासन ने अब तक उन्हें इजाजत नहीं दी है। घटना के 3 दिन बाद अभी तक दिल्ली पुलिस ने हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया है। पूछे जाने पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने बताया,
5 तारीख के क्लैशेज रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रीमाइस के अंदर या बाहर कहीं से भी किसी तरीके की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। जो केसेस हैं ट्रांसफर किए जा चुके हैं क्राइम ब्रांच को फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कंप्लेंट्स की जो बात है, कुछ कंप्लेंट्स मिली हैं पुलिस स्टेशन वसंतकुंज नॉर्थ में, जिनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम तरीके के वीडियोज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो हेल्प मिल जा सकती है वो कलेक्ट की जा रही है। एज फार एज इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड, इट इज ऑन ट्रैक।
हिंसा के एक दिन पहले यानी 4 तारीख को जेएनयू के सर्वर रूम में छात्रों द्वारा तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। इस मामले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं,
अगर मैंने जिसका वर्णन किया कि सर्वर बंद करना, छात्रों को शैक्षिक काम से रोकना, अगर इसके लिए एफआईआर है तो आप भी आपकी राय बदलेंगे।
वहीं हिंसा में घायल जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष कहती हैं,
जब मैं अपने जान के साथ जूझ रही थी एम के ट्रॉमा सेंटर में, तब अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एफआईआर चला गया। क्यों? हम मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, अभी तक वाइस चांसलर की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया है, एक फोन पे बातचीत नहीं हुई है, यहाँ पे मेरा हालत क्या है। तो ये क्लियरली दर्शाता है फेयर एंड फ्री, फेयर एंड फ्री इंक्वायरी यहाँ पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा वाइस चांसलर है बायस।
5 तारीख के हिंसा के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुद्दे को लेकर कई हलकों में चर्चा गर्म है कि पुलिस जानबूझकर अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने जेएनयू हिंसा में जांच आगे न बढ़ने का आरोप सीधा केंद्र सरकार पर लगाया है।
दिल्ली सीधे गृह मंत्री के तहत है और पुलिस भी सीधे सीधे गृह मंत्री के तहत है। ये हमला सरकार ने ही कराया है, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि मामले में कोई गिरफ्तारी
होगी?
जेएनयू में हुई हिंसा का मामला आसानी से थमता नहीं दिख रहा। कल रात बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जेएनयू पहुंचकर घायल छात्रों से मुलाकात की थी। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई लोग छात्रों के समर्थन में आगे आए हैं। पूरे देश में कई और विश्वविद्यालयों के छात्र भी जेएनयू के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय कब तक मिलेगा इसका सभी को इंतजार है।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई हैं। अमेरिकी कार्रवाई में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत और उसके जवाब में ईरान की ओर से इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद मध्य पूर्व में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। आशंका जताई जाने लगी है कि ईरान और इराक के बीच युद्ध छिड़ सकता है और इसका नुकसान क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया, ईरान पर इसका क्या असर होगा और अगर मध्य पूर्व में हालात और गंभीर हुए तो क्या असर होगा? बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने इस बार दुनिया जहान में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है।
दुनिया जहां ये आवाजें ईरान की ओर से जारी उस वीडियो की हैं जिसमें उसने इराक के अल असद और इरबिल में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमले का बताया है। अमेरिका ने भी पुष्टि की है कि ईरान ने उसके अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान ने ये हमला पिछले हफ्ते अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए अपनी कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए किया। वो सुलेमानी जिन्हें ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था, वो सुलेमानी जिनकी मौत पर पूरा ईरान एकजुट हो गया।
ایسار و بیداری رفتی ولی تا آخر تاریخ
जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। शुरू से ही वो जोर देते रहे कि ईरान पश्चिमी देशों के साथ नया परमाणु समझौता करे। जब ईरान राजी नहीं हुआ तो ट्रंप ने 2015 में हुए इस समझौते से मई 2018 में बाहर निकलने का ऐलान किया। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंधों, धमकियों और परोक्ष युद्ध का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो आज इस रूप में देखने को मिल रहा है। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी कई दशकों पुरानी है और दोनों के बीच एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है।
ईरान जो है सो अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर्स था मिडल ईस्ट को स्टेबलाइज करने में। सो 1973 की जंग के बाद से इजिप्ट और ईरान वेयर द मेजर एलाइज अमेरिका के 1973 से 79 तक। 79 के जो रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका ने वहाँ रिजीम चेंज करने की कोशिश की, ईरान इराक की जंग में इराक को सपोर्ट किया, तो ये ताल्लुकात वहाँ से खराब होने लगे हैं। वैसे एंटी अमेरिकनिज्म की जो बीज थे वो 1953-54 में ही अमेरिका ने जब वहाँ के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे मुसद्दिक हुसैन उनको रिप्लेस करके बादशाहियत मतलब डेमोक्रेसी को रिप्लेस किया मोनार्की से अमेरिका ने। तो जब से एंटी अमेरिकनिज्म चल रहा है वहाँ पर, और फिर 2003 के बाद से ईरान का जो यूं कहिए कि इंपीरियल रीच मिडल ईस्ट में जो बढ़ गया, इराक में, लेबनान में उसकी प्रेजेंस, अमेरिका मुसलसिल कोशिश कर रहा है कि ईरान पॉलिटिक्स उसकी गवर्नमेंट को बदल दे, और ईरान मुसलसिल कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ वो अमेरिका का जो डोमिनेशन है मिडल ईस्ट पर उसको ख़त्म करे बल्कि इसराइल का भी जो कंट्रोल है फलस्तीनी टेरिटरीज पर उसको ख़त्म करे। तो ये टेंशन यूँ कहिए कि 1979 से चल रहे हैं। अब इन्होंने जो जनरल सुलेमानी को मारे हैं, मैं अमेरिका की गवर्नमेंट के लोगों से बात कर रहा था और उनका एस्टिमेट है कि जनरल सुलेमानी ने 1100 से लेकर 1700 अमेरिकन को मारा है इराक में। तो इस तरह से ये कहिए कि कोल्ड वॉर भी नहीं बल्कि थोड़ा बहुत ल्यूक वार्म जंग चली रही है ईरान के साथ।
जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के लिए कितने अहम थे इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां जहां से उनका जनाजा गुजरा लाखों की संख्या में लोग जुटे। मंगलवार को तो उनके पैतृक शहर किरमान में इतनी भीड़ जुटी कि भगदड़ में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई। अहवाज और तेहरान में भी भारी संख्या में लोग जुटे। तेहरान में रहने वाली वरिष्ठ पत्रकार जहरा जैदी बताती हैं कि सुलेमानी इतने लोकप्रिय थे कि उनके जनाजे में शामिल भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
एक अजीब सी मोहब्बत थी पूरे देश में उनके लिए, देशवासियों में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी उनके लिए बड़ी मोहब्बत पाई जाती थी। क्यों ये या वो जानते हैं या उनका खुदा जानता है, जो यहाँ पर भीड़ थी उसने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी पॉपुलेशन को आप नजर में रख लें, लोग कह रहे हैं कि इमाम खुमैनी को आज जैसे जनाजे में जो जितने ज्यादा लोग थे शायद अगर उससे ज्यादा नहीं थे तो उससे कम भी नहीं थे।
कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जिस कुद्स फोर्स का नेतृत्व करते थे वो ईरान के मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े काम को संभालती है। मध्य पूर्व में बढ़ते ईरान के प्रभाव का श्रेय जनरल सुलेमानी और कुद्स फोर्स को ही दिया जाता है। सुलेमानी की मौत से ईरान में गम और गुस्से का माहौल बेशक है, मगर क्या इसे ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है? क्या ईरान ने बेशक एक लोकप्रिय शख्सियत को खोया है लेकिन उनकी मौत से ईरान को क्या नुकसान हुआ और अमेरिका को क्या हासिल हुआ, इस बारे में प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं।
इस मामले में अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी अजीब है। IRGC को कोई इंस्टीट्यूशनल धक्का नहीं लगा, इससे ईरान की कैपेबिलिटीज में कुछ फर्क नहीं आया, और ये कोई करिश्मेटिक पॉलिटिकल लीडर भी नहीं था जिससे कंट्री का डायरेक्शन में कुछ कमजोरी आ सकती है। तो इन दैट सेंस फ्रॉम ए प्योरली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इससे कुछ फायदा नहीं होगा अमेरिका को। अलबत्ता ये और बात है कि 3 दिन पहले जो ईरान के एसेट्स थे मिलिट्री एसेट्स वो अब थोड़े نیفٹی ہو گئے ہیں, یعنی ان کے پاس غصہ آ گیا ہے اور ان کو موٹیویشن بھی مل گیا ہے. اور آن اے پولیٹیکل لیول یہ جو ٹرمپ نے ٹویٹس کیے ہیں کہ ہم ایرانین کلچرل ایسٹس وغیرہ کو ہٹ کریں, اس سے ویسٹرن دنیا میں ٹرمپ کے خلاف کافی اوپینین خراب ہو گیا ہے کہ یہ پریسیڈنٹ ہیں یا وینڈل ان چیف ہے کہ یہ وینڈلزم کرنے لگے ہیں فورن پالیسی کے تھرو. اور جو ایرانین پبلک تھی, جو ایران کی گورنمنٹ تھے, وہ اپسٹ تھے کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے اکانومی اتنی ڈاؤن تھی. اب وہ پوری طرح سے اپنی گورنمنٹ کے پیچھے الائن ہو گئے, تو امریکہ نے ایک قسم سے ایران کو یونائٹ کر دیا.
ایران نے سلیمانی کی جگہ اسماعیل غنی کو قدس فورس کا چیف بنایا ہے, جنہیں سلیمانی کا بھروسے مند سمجھا جاتا تھا. جب سلیمانی پر حملے سے ایران کے ہتھیاروں, اس کی کشمتا کو نقصان نہیں پہنچا, تو پھر امریکہ نے یہ قدم اٹھایا کیوں؟ یروشلم میں رہنے والے ورشٹ پترکار ہریندر مشرا بتاتے ہیں کہ امریکہ نے اس کارروائی سے اپنے اہم سہیوگی دیش اسرائیل کا بھی بھروسہ جیتا ہے.
جہاں تک سلیمانی کو لے کر کے اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ مانتا رہا ہے کہ جتنے بھی حملے ہوتے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, جتنی بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں, اس کے لیے اسرائیل انہیں ذمہ دار جو ہے ٹھہراتا رہا ہے ابھی تک. تو اسرائیلی سرکار نے اس کا بالکل سواگت کیا امریکی کارروائی کا. اور دراصل اسرائیل میں اگر دیکھیں اسٹریٹجیکلی تو یہ مانا جاتا ہے کہ کافی حد تک امریکہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ چھوڑ رہا تھا. جہاں تک ایران کے مسئلے پہ اس طرح کی سوچ بنتی نظر آ رہی تھی, یہاں پر مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو اپنے کو خود ہی ڈیفینڈ کرنا پڑے گا, لیکن اس کاروائی کے بعد اب اسرائیل میں لوگوں کو اچانک راحت ملی ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ جو لڑائی ہے ایران کے خلاف, اس میں اسرائیل اکیلا نہیں ہے, بلکہ اب امریکہ بھی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ پوری طرح سے کندھے سے کندھا ملا کر کے لڑے گا.
امریکہ نے قدس فورس اور سلیمانی کو آتنکوادی گھوشت کیا ہوا تھا. امریکہ کا ماننا ہے کہ مدھیہ پورو, خاص کر عراق میں کئی امریکیوں کی موت کے لیے سیدھے طور پر سلیمانی ذمہ دار تھے. جیسے ہی قاسم سلیمانی کی موت کی خبر آئی, امریکہ کے رکشا منترالے نے کہا کہ یہ قدم راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے آدیشوں کے بعد اٹھایا گیا. سلیمانی کو مارنے کا فیصلہ کرنے کے پیچھے امریکہ میں کچھ آنترک کارنوں پر بھی چرچا ہو رہی ہے, جن میں جلد ہونے جا رہے راشٹرپتی چناؤ اور ڈونلڈ ٹرمپ پر چل رہا مہابھیوگ بھی شامل ہے. پروفیسر مقتدر خان بتاتے ہیں,
2011 میں ٹرمپ نے تقریباً 15-20 بار ٹویٹ کیا تھا کہ اوباما ایران سے جنگ شروع کر دیں گے الیکشن جیتنے کے لیے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہی لاجک اب ٹرمپ یوز کر رہا ہے. دو وجہ, ایک تو ایک الیکشن جیتنے کے لیے, دوسری چیز یہ ہے اگر ایران کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا جنگ کے دوران سٹنگ پریسیڈنٹ کو امپیچ کیا جا سکتا. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ایک امپیچمنٹ کو آف دا ایجنڈا کرنے کے لیے, خاص طور سے سینیٹ کا جو ایشو ہے وہ, اور دوسرا جو اس کے کنزرویٹیوز ہیں وہ اس میں سپورٹ اور اسٹرانگ کرنے کے لیے. لیکن اس سے مس کیلکولیشنز بھی ہو سکتے ہیں. میری تھوڑے انالسٹ سے بات ہوئی جو گورنمنٹ میں ہے, ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 3-4 مہینے سے ایران نے بہت پروکیشنز کیے. ایک تو سعودی ریفائنریز پہ ہٹ کیا, دوسرا اس نے ڈائریکٹ امریکنز, پچھلے ہفتے ہی 7 امریکنز کو مارا عراق میں. تو ایکچولی ڈائریکٹ امریکن ایسٹس پہ مسلسل وہ اٹیکس کر رہے تھے, اس کے ریٹیلیشن میں امریکہ کو یہ موقع مل گیا اور انہوں نے سلیمانی کو نکال دیا.
بدھوار کو ایران نے عراق میں موجود امریکی سینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو اس کے ودیش منتری جواد ظریف نے کہا کہ انہوں نے سنیکت راشٹر کے پراودھانوں کے تحت آتم رکشا کے ادھیکار کے تحت یہ قدم اٹھایا ہے. مگر مدھیہ پورو میں امریکہ کے سہیوگی دیش سعودی عرب اور اسرائیل پہلے سے ہی ساودھان ہیں. ورشٹ پترکار ہریندر مشرا بتاتے ہیں کہ اسرائیل میں اس بات کی بھی آشنکا جتائی جا رہی ہے کہ کہیں ایران ان کے یہاں نہ حملہ کر دے.
ایران نے کھل کر کے کہا ہے کہ اسرائیل بھی اس کا ٹارگٹ ہے, وہ سکشم بھی ہے, اس کے راکٹ کے دائرے میں اسرائیل بھی آتا ہے. تو اس کو لے کر کے اسرائیل میں ایک ڈر بھی ہے, ایک طرح کی تیاری بھی چل رہی ہے ہوم فرنٹ کی کہ اگر کسی طرح کا کوئی یہاں اسکلیشن ہوتا ہے, استھتی ہاتھ سے باہر نکلتی نظر آتی ہے, تو اس کی بھی پوری تیاری ہوتی نظر آ رہی ہے.
ایران کے نیتریتو کے اوپر سلیمانی کی موت کا بدلہ لینے کا بھاری دباؤ ہے, لیکن پہلے سے ہی آرتھک پرتبندھوں کی مار جھیل رہا ایران اس ستھتی میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے سہیوگیوں سے سیدھے یدھ میں الجھے. وہ انتراشٹری سمودائے کی ناراضگی بھی مول نہیں لے سکتا, پھر اس کے پاس وکلپ کیا ہیں؟ پروفیسر مقتدر خان بتاتے ہیں,
اگر آپ 3 لیول میں دیکھیں, ایک تو ڈائریکٹ امریکہ کے فوجیوں کو اٹیک کریں اور انہیں ماریں جس طرح سے IEDs وغیرہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں افغانستان اور عراق اور سیریا میں. سیکنڈ لائن آف ٹارگیٹس یہ رہے گا کہ جو سلائٹلی سافٹر ٹارگیٹس ہیں جیسا کہ ایمبیسیز ہیں اور کانٹریکٹرز وغیرہ. دی تھرڈ ٹارگیٹ لائن اپ ہے کہ امریکہ کے ایلائز کو, لیکن ملٹری ٹارگیٹس کو ایران ضرور ٹارگیٹ کرے گا, کیونکہ ایران کو دو چیز چاہیے, ایک تو ایک ریٹیلیشن اور دوسرا کلیم کر سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اگر وہ سیویلین ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ کلیم نہیں کر سکے گا, اگر ملٹری ٹارگیٹس کو ہٹ کرتے ہیں تو ایران اس کو کلیم کر سکتا ہے. اور ایران امریکہ کے ایلائز کو بھی ٹارگیٹ کرے گا, خاص طور سے سعودی عربیہ کے جو دوسرے ایسٹس ہیں. تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف آئندہ چند مہینے خاص طور سے, اور جیسا جیسا الیکشن کے قریب آئیں گے ایران کوشش کرے گا کہ امریکہ کے ٹارگیٹس کو اور ہٹ کریں تاکہ ٹرمپ کے لیے ذرا مشکل پڑے.
ایران نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنا پربھاؤ بڑھایا ہے, لیبنان, عراق, سیریا اور یمن تک میں ودروہی سموہوں اور ملیشیا کو وہ سمرتھن دیتا رہا ہے. اس کے علاوہ سیریا میں اسلامک اسٹیٹ سموہ کے خلاف سکریہ رہ کر بھی اس نے ترکی اور روس جیسے دیشوں سے قریبی بڑھائی ہے. چین بھی سمے سمے پر ایران کا ساتھ دیتا رہا ہے. اگر یدھ کی استھتی بنی تو کیا یہ دیش ایران کا ساتھ دے پائیں گے؟ اس سوال پر مدھیہ پورو معاملوں کے جانکار ورشٹھ پترکار ہریندر مشرا کہتے ہیں,
ध्रुवीकरण जो है वो देखने को मिला है, और जिन देशों का आपने नाम लिया ये भी सही है कि वो एक एंटी अमेरिका स्टैंड उनका रहा है हाल फिलहाल देखने को मिला है, और ये सारे जो हैं वो एक समूह में एक साथ आकर के और वो लगातार विरोध करते रहे. जो विरोध है वो काफी हद तक मुखर भी रहा है. अगर ये सारे देश मिल करके इस पर किसी तरह का कुछ कदम उठाते हैं तो जाहिर है कि एक बहुत यहाँ पर भयावह स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है. لیکن ایک اور بات ہے, مدھیہ پورو پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس طرح کے دھروویکرن کے باوجود ایسے بھی ڈیولپمنٹس ہوتے رہے جہاں پر کہ اس طرح کے لوگ جو کہ کبھی ساتھ نہ آتے نظر آئے ہوں وہ بھی ساتھ آ کر کے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ کیا ہے. یہاں کی استھتی ابھی جو ہے مدھیہ پورو میں گٹھ اتنے سارے بنے ہوئے ہیں اور سب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے لڑ رہے ہیں کہ کون کس کا ساتھ کر دے گا یہ بھی سمجھ پانا بڑا مشکل ہے.
ایران کے نیتا لمبے سمے سے امریکہ کو تباہ کر دینے کی باتیں کرتے رہے ہیں اور امریکہ بھی ایران کو سبق سکھانے کے ارادے جتاتا رہا ہے, جبکہ ایک سمے تھا جب ایران مڈل ایسٹ میں امریکہ کا سب سے قریبی سہیوگی تھا. لیکن وقت کے ساتھ دونوں کے رشتے اتنے خراب ہو گئے کہ بات اب کھلے یدھ کی ہونے لگی ہے اور کھل کر حملے بھی ہونے لگے ہیں. مقتدر خان بتاتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مدھیہ پورو میں امریکہ کو لے کر جو ڈر اور عزت کا بھاو تھا وہ ختم ہو گیا ہے.
یہ جو چیز تھی نا امریکہ کی پہلے وہ ختم ہو گئی ہے. اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ وہ امریکہ سے پنگا لے سکتا ہے اور امریکہ کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتا ہے. تو وہ جو چیز ہے جو ڈر تھا امریکہ سے وہ ختم ہو گیا ہے مڈل ایسٹ.
ایران سمیت پورا مدھیہ پورو دنیا بھر کے تیل اتپادن کا کیندر ہے. یہاں ہونے والی چھوٹی سی چھوٹی ہلچل بھی کچے تیل کی قیمتوں میں بدلاؤ لا دیتی ہے. سلیمانی کی موت اور پھر ایران کی جوابی کارروائی کا اثر بھی تیل کی قیمتوں پر پڑا ہے. آشنکا یہ ہے کہ معاملہ اور بڑھا تو تیل کی سپلائی کہیں رک نہ جائے. اس آشنکا سے دنیا بھر کے شیئر بازار ہل گئے. تیل پوری دنیا کی ارتھویوستھا کا آدھار ہے. ایران پر بے شک پرتیبندھ ہیں مگر عراق, کویت, سعودی عرب اور سنیکت عرب امیرات جیسے دیش ہومروز جل ڈمرو مدھیا سے ہو کر تیل کی آپورتی کرتے ہیں. اگر ایران چاہے تو اس راستے کو تیل کے جہازوں کے لیے بند کر سکتا ہے, جس کا نقصان بھارت سمیت پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے فی الحال ہر کوئی یہ امید کر رہا ہے کہ اس تناؤ کو کم کرنے کا کوئی تو راستہ نکلے.
دنیا جہان کی اس کڑی پر آپ کی پرتکریا کا ہمیں انتظار رہے گا. کارکرم میں آپ سے ودا لیں اس سے پہلے مکھیہ سماچار ایک بار پھر گرپریت سینی سے.
بی بی سی سماچار. بھارت میں آج مزدور یونینوں نے دیش ویاپی بند بلایا جس کا اثر کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملا. امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عراق میں امریکی سینے اڈوں پر ہوا مسائل حملہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور نقصان کا آکلن کیا جا رہا ہے. یوکرین کا ایک یاتری ویمان کل دیر شام تہران کے امام خامنئی ہوائی اڈے سے کیو کے لیے اڑان بھرتے ہی درگھٹنا گرست ہو گیا. بی بی سی سماچار.
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला जीत सारथी ने। अब आपसे होगी मुलाकात कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।